परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से और उसके वचन की संगति में रहकर कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर के निकटता में आएं और प्रार्थना करें और उससे सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे प्रतिदिन बातचीत करते हैं, हमें नई नई बातों को सिखाते हैं। आज हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार से सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को और हमारे एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका जीवित वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को सुने तो हम अपने जीवन में उन महान आशीषों को ले सकें जो आप हमें देना चाहते हैं। इस समय हमारी प्रार्थना है उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी जो दुखी हैं और निराश हैं, जो चिंता और परेशानियों में हैं, बीमारी और तंगी हालत में हैं। प्रभु आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उन्हें भी छुएं, अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें, ताकि वे आपकी महान सच्चाई को अपनी आत्मिक आंखों से देख सकें, जान सकें, समझ सकें और कहने पाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वक्त हर एक पर आपकी आशीष मांग लेते हैं, हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने अब तक देखा था कि यीशु गलील के काना नगर में विवाह उत्सव में उपस्थित था, जहां मरियम उसकी माता उसे दाखमधु समाप्त होने की सूचना देती है। उसका कहने का अर्थ था, आज दिखा दे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। परंतु यीशु ने उचित समय की प्रतीक्षा की। अब यीशु वहां से चलकर कफरनहूम में आता है, जहां वह अधिक समय नहीं रुकता है, क्योंकि फसा का पर्व निकट था और वह यरूशलेम को आ जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। यह संभवतः उस समय का उल्लेख है जब उसने आराधनालय में यशायाह से पढ़ा था। उन्होंने उसे अस्वीकार किया क्योंकि वे उसके पिता यूसुफ को जानते थे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 22 में लिखा है, वे कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, यीशु को शायद यह बोध हो गया था कि वे उसे घात करना चाहते हैं। अतः वह कफरनहूम से चला गया और मेरे विचार में अपनी सेवा के 3 वर्ष उसने कफरनहूम को अपना मुख्यालय बनाया। आइए अब हम आगे देखते हैं यीशु द्वारा फसह के समय मंदिर का शोधन अर्थात शुद्धिकरण करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। यहाँ पर देखिए यूहन्ना स्थानों की चर्चा करते समय कैसा स्पष्ट विवरण देता है। यहाँ ध्यान दें कि यूहन्ना लिखता है यहूदियों का फसह, जबकि निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 27 में लिखा है उसके अर्थात यहोवा के फसह। अब यह स्मृति नाम मात्र की रह गई थी, केवल प्रथागत थी। वैसे भी फसह जिसकी चर्चा करता है वह आ गया था। पौलुस कुरिन्थियों की कलिसिया को अपने पहले पत्र में लिखता है, 1 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। मित्रों, यह समय लगभग उसकी सेवा आरंभ करने के 1 वर्ष बाद का है। यहूदियों के लिए अनिवार्य था कि हर एक पुरुष वर्ष में 3 बार यरूशलेम जाएगा फसह के पर्व पर। पेंतेकोस्त के समय और झोपड़ियों के पर्व पर यह फसह लगभग अप्रैल 14 को आया था। देखिए यूहन्ना समय और स्थान का उल्लेख करने से नहीं चूकता है। यहां वह मंदिर पर शोधन करता है। उसने 2 बार ऐसा किया था, अपनी सेवा के आरंभ में और अंत में। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 14 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। मित्रों ध्यान दीजिए, उनके नियमानुसार मंदिर में सरकारी मुद्रा स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें मंदिर की मुद्रा से ही दान देना होता था और बलि के पशु एवं परिंदे खरीदना होता था। इस विनिमय में वे बट्टा करके अच्छी आमदनी करते थे। वे बड़ी मुद्रा के लिए फुटकर भी देते थे। उनके तर्क के अनुसार वे धर्म को आसान बना रहे थे कि आगंतुकों अर्थात जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको सुविधा प्राप्त हो, परंतु उन्होंने वास्तव में धर्म को गिरा दिया था। हमें कलीसिया में भी पैसे को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, परंतु कभी कभी चेतावनी की पुकार भी आवश्यक होती है। मित्रों, वे बलि के लिए पशु पक्षियों को भी बेचते थे। वहां भी चोर बाजारी होती थी, सस्ता जानवर महंगे में बिकता था। यह एक धार्मिक ठग व्यापार था। ऐसी समस्या आज भी हमें कई जगह पर देखने को मिलती है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 15 से 17 पद में आगे पढ़ते हैं, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु एक बलवान मनुष्य था। मुझे यीशु के चित्र स्वीकार नहीं होते, क्योंकि वे यीशु को दुबला पतला दिखाते हैं। चित्रकारों ने यीशु को ठीक से नहीं समझा। शिष्यों को यह देख भजन 69 का पद 9 स्मरण आया। नए नियम में यह भजन 17 बार आया है। यह भजन नए नियम में संदर्भित 6 भजनों में से एक है। यूहन्ना में यह भजन 15 अध्याय के 25 पद में और 19 अध्याय के 28 और 29 में ही संदर्भित किया गया है। अन्य भजन है 2, 22, 89, 110 और 118। आइए हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 18 और 19 पद को। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मित्रों, ढा शब्द के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है खोल देना अर्थात बंधन मुक्त करना। वह अपनी देह से आत्मा मुक्ति की बात कह रहा था। हम आगे देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मित्रों, यह मंदिर हेरोदेस बनवा रहा था जो 46 वर्ष से निर्माणाधीन था। पद 14 और 15 में मैं आपका ध्यान मंदिर शब्द की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ जो शब्द यीशु ने कहा उस यूनानी शब्द का अर्थ है जो संपूर्ण मंदिर जबकि पद 19 में जो शब्द उसने मंदिर के लिए काम में लिया है उसका अर्थ है वेदी का भाग अर्थात पवित्र स्थान। यह शब्द देह के लिए भी काम में लिया जा सकता है, जैसा पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मित्रों, यह हाथों का बना हुआ नहीं है। यहूदी सोचने लगे कि वह यहूदियों के उस मंदिर को गिराकर फिर बनाने की बात कर रहा है, परंतु प्रभु यीशु अपनी देह के लिए कह रहा था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। मित्रों, खड़ा करने के लिए यीशु ने जो शब्द काम में लिया वह यूनानी का शब्द था और उसका वास्तविक अर्थ उठाना। यूहन्ना ने 5 बार इस शब्द को काम में लिया है। इसका निहितार्थ है मृतकों में से जी उठना। पौलुस अंतकिया में उपदेश देते समय इसी शब्द को उपयोग द्वारा यीशु के पुनरुत्थान का वर्णन कर रहा था। विश्वासियों के पुनरुत्थान के लिए भी यही शब्द काम में लिया गया है। लाजर को यीशु ने मृतकों में से खड़ा किया, वहां भी यही शब्द काम में लिया गया है। यीशु के कहने का अर्थ ठीक यही था। उसके शिष्य उस समय तो उसकी बात नहीं समझे थे, परंतु उसके पुनरुत्थान के बाद उन्हें स्मरण आया कि उसने क्या कहा था और उन्होंने उसका प्रचार भी किया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 22 पद में आगे पढ़ते हैं, सो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। मित्रों, आप ध्यान दीजिए कि निकोदिमस यीशु से भेंट करने के लिए आता है। अब हम एक बड़ी ही रोचक घटना को देखने जा रहे हैं। हमें पद 23 में अध्याय 3 तक पढ़ते जाना होगा जहां निकोदिमस की कहानी है। यह सब फसह के समय यरूशलेम में ही हुई थी। आइए हम पढ़ें 2 अध्याय उसके 23 पद में, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। मित्रों, हम इसे पढ़कर आनंद करते हैं कि अनेक लोग यीशु में विश्वास ला रहे थे, परंतु सच्चाई यह नहीं थी। वे केवल स्वीकृति दिखाते थे, उनका विश्वास उद्धार के निमित्त विश्वास नहीं था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 24 और 25 में पढ़ते हैं, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सब को जानता था और उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। कहने का अर्थ यह है कि यीशु ने उनके विश्वास के प्रदर्शन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह तो मनों का जांचने वाला था। वह मेरे और आपके मन को भी जानता है। आज भी यीशु में विश्वास का दावा करने वालों के सामने यही संकट है। आपके कहने का क्या अर्थ है जब आप कहते हैं कि आप यीशु में विश्वास करते हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप सुसमाचार की सच्चाई को स्वीकार करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह आपका उद्धार करता है जो आपके पापों के लिए मरा? क्या वह आपकी धार्मिकता के लिए फिर जी उठा? क्या वह आपके स्वर्ग में प्रवेश का एकमात्र आशा है? मित्रों, उन्हें तो यीशु के चमत्कारों को देखकर विश्वास करना था, परंतु यीशु ने उन पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि उनके विश्वास में गहराई नहीं है। उसे आवश्यकता नहीं थी कि कोई गवाही दे, वह तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में यीशु ने जनसमूह पर भरोसा नहीं किया। जब निकोदिमुस रात के समय यीशु के पास आया तब यीशु ने उस पर भरोसा किया क्योंकि उसके मन में सच्चा विश्वास था। मेरे मित्रों, यहाँ अध्याय 2 समाप्त होता है, परंतु कृपया आप अध्याय के साथ घटनाओं को अलग ना करें। यहाँ घटनाक्रम चल रहा है। अब हम अध्याय 3 में आते हैं जहाँ पर हम निकोदिमुस की भेंट यीशु के साथ होती हुई देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 24 से 3 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फरीसियों में से निकोदिमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ध्यान दीजिए, यीशु ने जनसमूह पर भरोसा नहीं किया, परंतु निकोदिमुस मन का सच्चा मनुष्य था। तो आइए अब हम निकोदिमुस के जीवन को देखें। यहाँ निकोदिमुस के बारे में तीन बातें कही गई है। वह एक फरीसी था, अर्थात इसराइल के कुलीन वर्ग में से था। वे धर्मशास्त्र की प्रेरणा में और मसीह के आगमन में विश्वास करते थे। वे चमत्कारों और पुनरुत्थान में भी विश्वास करते थे। वह यहूदियों का सरदार भी था। आज अधिकांश लोग निकोदिमुस की नाई हैं। निकोदिमुस का प्रत्यक्ष रूप प्रतिष्ठा से पूर्ण था। जब वह अपने प्रथागत वस्त्रों में सड़क पर निकलता था, तब लोग किनारे हो जाते थे कि उनका सरदार जा रहा है। उसके रूप से उसका प्रभाव प्रकट होता है, परंतु उसका आंतरिक मनुष्य निकोदिमुस था। मित्रों, आज का मनुष्य भी ठीक ऐसा ही प्रकट होता है। वह अपने कार्यस्थल में एक प्रफुल्लित व्यक्ति दिखाई देता है, मनोरंजन कक्ष में एक सफल व्यक्ति प्रकट होता है और वह सबसे प्रसन्नतापूर्वक भेंट करता है, परंतु जब वह घर लौट आता है तब अपने वास्तविक रूप में होता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? तब वह अपने दिल के दुखों का उद्गार निकालना आरंभ करता है। यही उसका वास्तविक रूप है। हम योहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। मित्रों, ध्यान दीजिए, निकोदिमुस यीशु के पास एक फरीसी के रूप में आता है। वह सच कहता है कि फरीसी अर्थात हम स्वीकार करते हैं कि वह परमेश्वर की ओर से भेजा गया सच्चा शिक्षक है। मेरे विचार में वह परमेश्वर के राज्य के विषय यीशु से विचार विमर्श करने को आया था, क्योंकि फरीसी रोमी राज्य से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, अर्थात छुटकारा पाना चाहते थे। अब क्योंकि निकोदिमुस एक गणमान्य व्यक्ति था, इसलिए फरीसियों ने उसे यीशु के पास भेजा। उनके विचार में यीशु गलीली होने के कारण राजनीति में प्रवीण नहीं था। वे उसके साथ समझौता करना चाहते थे। वह यीशु के ईश्वरत्व के प्रमाण में उसके चमत्कारों को सामने रखता है। उस युग में यीशु के चमत्कारों का कोई भी इनकार नहीं करता था, चाहे वे यीशु के बैरी ही क्यों ना हो। हम योहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मित्रों, मेरे विचार में यीशु के पास आने का उसका कारण यही था, क्योंकि यीशु बिना किसी भूमिका के उसे सीधा और स्पष्ट कहता कि परमेश्वर का राज्य देखने के लिए उसे नया जीवन पाना आवश्यक है। वह फरीसी था जो धार्मिकता में सबसे ऊंचे माने जाते थे, और यीशु उससे सीधा सीधा नए जन्म की चर्चा करता है। अब उसका फरीसी रूप समाप्त होता है। आइए पढ़ें यूहन्ना 3:4। निकोदिमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? मित्रों, ध्यान दें, नए सिरे से यूनानी शब्द का अनुवाद है, जिसका अर्थ है स्वर्ग से। परंतु निकोदिमुस समझा कि यीशु के कहने का अर्थ था पुनर्जन्म, अतः वह अपने फरीसी आडंबर से हटकर समझने का प्रयास करता है कि यह कैसे संभव होगा। यीशु की आत्मिक बात को वह नहीं समझ पाया, क्योंकि उसमें आत्मिक क्षमता नहीं थी। मेरे प्रिय मित्रों, कई बार मैं और आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उन वचनों को समझने का प्रयत्न करते हैं, और उस बात को हम नहीं समझते जो परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उसके सामने अपने आप को लेकर के आए, अपने पापों को अंगीकार करें। इतना ही नहीं, उन साधारण सी बातों को स्वीकार करें कि प्रभु यीशु मेरे और आपके पापों के लिए मरा, ताकि हम उस नए जन्म को प्राप्त कर सकें। यहाँ पर निकोदिमुस, जो धर्म का ज्ञाता है, उसने भी इस बात को नहीं समझा। आज हम में से कई लोग ऐसे ही अनपढ़, ऐसे ही गंवार लोगों के बीच में रहकर इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है कि आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन आप भी नहीं समझ पाते हैं। आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है कि हम कहां पर हैं। मित्रों, साधारण सी बात है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम नया जन्म प्राप्त करें, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके परमेश्वर के दिए हुए उस नए मनुष्यत्व को ग्रहण करें, ताकि हम आत्मिक आनंद अपने जीवन में पा सकें, दूसरों को शांति पहुंचा सकें जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं? आपको निर्णय लेना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज आप अवश्य ही निकोदिमुस के सम्मुख आकर के परमेश्वर की इन वार्तालापों को जोड़ करके अपने आप को जांचेंगे और एक सही निर्णय लेंगे। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तन के मालिक, मन के मालिक, तन के मालिक, मन के मालिक, दिल दिमाग धड़कन के मालिक, भारत की धरती के मालिक, की धरती के मालिक, परम पिता ये।